रात का वक्त था। धनराज विला में हर तरफ गहरा सन्नाटा पसरा था। लिविंग रूम में हल्की डिम रोशनी बिखरी थी। वहीं सोफे पर इस वक्त मिस्टर धनराज बिल्कुल अकेले बैठे थे, सिगार पी रहे थे। मिस्टर धनराज, वो आदमी जिसकी सर्द निगाहें किसी को भी झकझोर कर रख देती थी, जिनकी नाम ही उनकी पहचान थी, और जो इतनी पावर रखते थे कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को अपने पैसे और पावर के बल पर पल भर में सॉल्व कर लेते थे, आज किसी हारे हुए खिलाड़ी जैसे लग रहे थे। चेहरे पर तनाव, आंखों में कुछ अजीब से भाव, माथे पर सिलवटे डाले वो किन्हीं ख्यालों में खोए थे। अचानक ही उस सन्नाटे में किसी के कदमों की आवाज़ गूंजी। मिस्टर धनराज ने नज़रें घुमाई। ठीक उसी वक्त तेज ने वहां कदम रखा। अपने डैड को वहां बैठे देखकर पल भर को उसके कदम रुके, लेकिन फिर वो उन्हें नज़रअंदाज करते हुए स्टेयर्स की तरफ बढ़ गया। ये देखकर मिस्टर धनराज की आंखें खतरनाक अंदाज में सिकुड़ गईं। उन्होंने अपना आधा जला सिगार सामने सेंटर टेबल पर रखे क्रिस्टल एश्ट्रे में डाली और सोफे से उठ खड़े हुए। अगले ही पल उनकी बुलंद कठोर आवाज उस सन्नाटे में गूंजी, तेज, इस वक्त कहां से आ रहे हो? तेज के आगे बढ़ते कदम ठिठक। वो पलटा, कुछ काम था डैड? क्या काम था? कुछ पर्सनल काम था जो आपको नहीं बता सकता। साफ जाहिर था तेज बस बात रफा दफा कर रहा था। मिस्टर धनराज ने सख्त निगाहों से उसे घूरा। कौन सा पर्सनल वर्क? मैं जानना चाहता हूं कि आखिर तुम्हें ऐसा भी कौन सा पर्सनल काम आ गया कि तुम आधी रात तक घर से बाहर रहे और अब मुझे वो काम बता भी नहीं रहे। आखिर क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो तुम मुझसे? डैड, कुछ बातें पर्सनल भी होती हैं जो किसी को नहीं बताई जाती। मैं आपका बेटा हूं, लेकिन मेरी भी कुछ प्राइवेसी है, तेज चिढ़ गया। तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में क्या क्या होता है मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। डैड प्लीज, अब आप बेवजह के सवाल जवाब से मुझे इरिटेट कर रहे हैं। ये मेरी लाइफ है, इसमें मुझे क्या और कैसे करना है, कौन सी बात आपको बतानी है और किस बात से आपका दूर रहना बेटर है, ये मैं डिसाइड करूंगा। आप जबरदस्ती मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश मत कीजिए। तेज झुंझलाहट से भर गया। गुस्से में वहां से जाने ही लगा था कि मिस्टर धनराज की बुलंद आवाज उसके कान से टकराई। तेज, ये सोचने की गलती मत करना कि मुझे पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो। तुम भले ही मुझसे सब छुपाते रहे, लेकिन मैं बाप हूं तुम्हारा। तुम कब, कहां, किसके साथ और क्या करते हो सब जानता हूं। तुम्हारे पल पल की खबर रहती है मुझे। पहले भी तुमने अपनी इम्पल्सिव नेचर से ऑलमोस्ट हमें को शर्मसार कर दिया था। हमारी ही कंपनी की एम्प्लॉय के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, और ऐसा करने से पहले तुमने एक बार हमारे परिवार की इज्जत, कंपनी की रेप्यूटेशन के बारे में नहीं सोचा था। उस वक्त अगर मैं बीच में नहीं आया होता तो तुम शायद आज जेल में होते। तब मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा था, तुम्हारी जवानी में हुई भूल समझकर तुम्हें माफ कर दिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तब बहुत मुश्किल से मैंने उस सिचुएशन को संभाला था। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, फिर से अपनी वही गलती मत दोहराओ। तेज, दूर रहो उस लड़की से। उनके चेहरे पर चिंता, फिक्र, अफसोस जैसे भाव दिख रहे थे, वहीं आंखों में वार्निंग थी। उनकी आंखों में आंखें डालते हुए तीखे स्वर में जवाब दिया, डैड, उस बात को तो आप बीच में लाइए मत। तब मैंने इनाया को इतने अच्छे से अपने जाल में फंसाया था और अपनी मंजिल से बस एक कदम की दूरी पर था, लेकिन आपने सब बर्बाद कर दिया। तब आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से इनाया मेरे हाथ से निकल गई थी। अगर उस वक्त आप मेरे और उसके बीच नहीं आए होते तो उसी वक्त मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाता। उस वक्त तो मैंने आपकी सुन ली थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अब मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं, और आप इस बार बीच में नहीं आएंगे। तेज, मैं बाप हूं तुम्हारा, तुम्हारी भलाई ही चाहता हूं। पहले भी एक बार तुमने अपनी इज्जत में सब बर्बाद कर लिया था। वो लड़की इनाया तब सिर्फ एक मामूली सी लड़की थी, फिर भी उसने तुम्हें पुलिस के झंझट में फंसा दिया था, और तुम्हें उस केस से बचाने के लिए हमें उस लड़की को तुम्हारे अगेंस्ट की कंप्लेंट वापस लेने पर मजबूर करना पड़ा था, जिसके लिए वो अंत तक तैयार नहीं थी। अगर तब उसके माँ बाप ने उस पर दबाव नहीं बनाया होता तो मैं भी तुम्हें जेल जाने से बचा नहीं पाता, और आज भी तुम अपने गुनाह की सजा काट रहे होते। तब वो अकेली थी, कमजोर थी, लेकिन आज उसके साथ कायरव रायचंद का नाम जुड़ा है। अगर तुमने उसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो अब की बार मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। वो कायरव अपनी बीवी को बहुत चाहता है। तुम्हारा उठाया एक गलत कदम तुम्हारे साथ साथ हमारे खानदान और बिजनेस सबको बर्बाद कर सकता है। अगर वो कायरव रायचंद है तो मैं भी तेज धनराज हूँ। इनाया जिद है मेरी, और उसे मैं हासिल करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मिस्टर धनराज अब भी उसे समझा रहे थे, लेकिन तेज को देखकर लग नहीं रहा था कि वो अपने कदम पीछे हटाएगा। उसकी इस जिद से मिस्टर धनराज परेशान हो गए। तेज, तुम क्यों मेरी बात नहीं समझ रहे? आज तक तुम कितनी ही लड़कियों के साथ रिश्ते में रहे, क्या मैंने पहले कभी तुम्हें रोका? जब जब तुम अपनी केयरलेसनेस की वजह से फंसते, मैंने हमेशा तुम्हारी हेल्प की। अभी तुम यंग हो, इसलिए जैसे तुमने चाहा मैंने तुम्हें तुम्हारी लाइफ जीने दी, लेकिन तुम्हारी इस जिद से तुम सब कुछ बर्बाद कर लोगे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है कि पहले भी उसके लिए तुम उस हद तक चले गए और अभी भी तुम्हारे सर से उसका नशा नहीं उतरा है। किस चीज़ की कमी है तुम्हें जिसे चाहो अपने बिस्तर पर ला सकते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वही लड़की चाहिए जो तुम्हारी बर्बादी की वजह बन सकती है। आप नहीं समझेंगे डैड, इनाया उन सब लड़कियों से बहुत अलग है। जो बात इनाया में है वो उन लड़कियों में नहीं जो मेरे एक इशारे पर मेरी बाहों में समा जाती है। मुझे वो पहली नज़र में पसंद आ गई थी। मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं उसे हासिल करके रहूंगा, और मुझे ऐसा करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, आप भी नहीं। तेज के सर पर जुनून सवार था, वो उनकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो अपना फैसला सुनाकर जाने लगा। तेज,
तुम्हारी ये जिद और ही को 7-7 सालों की मेहनत से खड़ा किया बिजनेस समाज में हमारा मान सम्मान सब बर्बाद कर देगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, उस लड़की से दूर नहीं रहे, तो मैं तुम्हें अपने बिजनेस और प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दूंगा। तुमसे तुम्हारे शेयर छीन लिए जाएंगे, तुमसे अपने सभी रिश्ते खत्म कर दूंगा। उसके बाद तुम्हें जो करना होगा करना। मिस्टर धनराज ने भी सख्ती से अपना फैसला सुनाया, जिसमें एक धमकी भी शामिल थी। तेज के कदम पल भर को रुके, फिर गुस्से से दनदनाते हुए वहां से चला गया। रूम में आते ही उसने इतने गुस्से में डोर बंद किया कि नीचे खड़े मिस्टर धनराज भी पल भर को कांप गए। लेकिन तेज का गुस्सा कम नहीं हुआ, उसने गुस्से में अपने रूम का सारा सामान फेंक दिया। कुछ ही देर में पूरा रूम तहस नहस हो गया और रूम में उसके चीखने की आवाजें गूंज रही थी। उसका गुस्सा और अग्रेसिव था कि कम ही नहीं हो रहा था। तेज ने गुस्से में शोपीस उठाया और सामने लगे बड़े से LED पर्दे मारा। पल भर में उसका स्क्रीन चकनाचूर हो गया। नहीं, इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से बचकर नहीं जाने दूंगा। इतनी मुश्किल से तुम दोबारा मेरे हाथ आई हो, मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा। तुम्हें हासिल करना मेरी जिद है। इस बार जो भी हमारे बीच आएगा, तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करेगा, उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। तेज के खतरनाक इरादों से अनजान इनाया ने दादी के साथ अच्छा वक्त बिताया था। अब उसका मूड काफी हद तक ठीक हो गया था। दादी से कायरव को डांट भी पड़ गई थी कि उसने इनाया का दिल दुखाया। इस वक्त कायरव हेडड्रेस से टेक लगाकर बैठा फोन चला रहा था। इनाया ने उसके हाथ को ऊपर उठाया और नीचे से घुसते हुए अपना सर उसके सीने पर रख दिया।
आज तो तुम्हें मुझ पर बहुत प्यार आ रहा था, खुद मेरे पास आ रही हो, क्या बात है? कायरव ने शरारत से उसे छेड़ा, लेकिन इनाया ने पलटकर कुछ जवाब नहीं दिया। बस अपनी बाहों को उसकी पीठ पर कसते हुए चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। नींद आ रही है तुम्हें? इनाया ने धीरे से सर हिलाया। कायरव ने फोन रखा, एक बाह से उसकी कमर को थामा और धीरे धीरे उसके सर को अपनी हथेली से सहलाने लगा।